बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान आज के बाइबल अध्ययन की ओर केंद्रित करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम बाइबल की पुस्तक में से पहला कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जो नए नियम की पत्री है। और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि पौलुस कहता है कि मसीह हमारा सिर है, हमें उसके स्वामित्व के अधीन रहना चाहिए। अब वह स्त्रियों द्वारा सिर ढांकने और पुरुषों द्वारा सिर ना ढांकने के विषय अपने विचार को प्रकट करता है, जबकि उसकी पृष्ठभूमि में पुरुष सिर ढांकते थे। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि हम पहले कुरिन्थियों से अध्ययन कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसका 4 पद। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसका 4 पद लिखा है, जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। मेरे मित्रों, ध्यान रखें कि इस युग अर्थात उस समय रब्बी शिक्षा देते थे कि पुरुष को अपना सिर ढांकना चाहिए, परंतु पौलुस कहता है कि उन्होंने वास्तव में मूसा को और उसके द्वारा मुंह ढांकने का गलत अर्थ लगाया। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस कहता है, मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इसराइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। यह उस घटना का संदर्भ है जो परमेश्वर की संगति में रहने के कारण मूसा के साथ घटी जब वह पर्वत पर था। जब पर्वत पर से उतरा तब उसके चेहरे की त्वचा पर चमक थी, जो कुछ समय बाद शनय शनय धीरे धीरे कम होने लगी। यही कारण था कि उसने अपना चेहरा ढांक लिया था कि वे घटती हुई महिमा का दर्शन कर पाए। देखिए निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसके 33-35 पद में पौलुस पुरुषों से कहता है कि उन्हें सिर नहीं ढांकना चाहिए। परमेश्वर के रूप में सिरजा गया पुरुष जो मुक्ति पाकर मसीह में है, उसे सिर नहीं ढांकना चाहिए। यह उसकी स्वतंत्रता और उसके सम्मान को प्रकट करता है। उसे प्रार्थना करते समय और भविष्यवाणी करते समय सिर नहीं ढांकना चाहिए। जब वह प्रार्थना करता है तो मनुष्य की ओर से परमेश्वर से बातें करता है और भविष्यवाणी करते समय वह परमेश्वर की ओर से मनुष्यों से बातें करता है। वह जब भी इन दो पवित्र स्थानों में होता है तो उसे अपना सिर ढांकना चाहिए। पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय के 5 पद में लिखा है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडन होने के बराबर है। मेरे प्रियो, सदियों पूर्व कुरिन्थ नगर में नारी मुक्ति मोर्चा क्रियाशील था, परंतु वह गलत दिशा में अग्रसर था। पौलुस कहता है कि पुरुष अपना सिर नहीं ढांके और स्त्री अपना सिर ढांके। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, जो स्त्री प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है इसका अर्थ है कि स्त्रियां सार्वजनिक सभा में प्रार्थना कर सकती थी, अर्थात वे जनसमूह के सामने खड़े होकर प्रचार कर सकती थी। वे जो इस विचार के समर्थक हैं कि स्त्रियों को ऐसा नहीं करना है, सर्वथा गलत है। यदि परमेश्वर ने किसी स्त्री को वरदान दिया है तो उसे अधिकार भी है कि सार्वजनिक सभा में खड़े होकर के प्रभु के वचन का प्रचार करे। कुछ स्त्रियों को परमेश्वर से वरदान प्राप्त है। मेरे प्रियो, मैं आज अनेक महिलाओं को जानता हूँ जो उत्कृष्ट बाइबल शिक्षक हैं। वे पुरुषों से भी अच्छा पढ़ा सकती हैं। मुझे एक प्रचारक ने अति स्पष्ट बताया कि उसकी पत्नी उसके कहीं अधिक अच्छी रीति से बाइबल की शिक्षक है। कलिसिया के एक पदाधिकारी ने कहा कि वे उस प्रचारक को सुनने की अपेक्षा उसकी पत्नी को सुनना चाहते हैं। उसे शिक्षा देने का वरदान प्राप्त था। पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय के 6 पद में आगे लिखा है, यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। मित्रों, यह विशेष एवं विशिष्ट रूप से कुरिन्थ के संबंध में है। कुरिन्थ में सिर नहीं ढांकने वाली स्त्री एक वेश्या होती थी और उनमें से अनेकों के सिर मुंडाए हुए होते थे। मंदिर की कुंवारियां अर्थात वेश्याएं सिर मुंडाकर रखती थी, अतः उन्हें उघाड़े सिर वाली स्त्रियां वेश्याएं ही थी। स्पष्ट है कि कुरिन्थ की कलिसिया में कुछ स्त्रियां कह रही थी, मेरे लिए सब उचित है अतः मैं सिर नहीं ढकूंगी। पौलुस कहता है कि ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि पर्दा करना पुरुष के निमित्त नहीं परमेश्वर के निमित्त अधीन रहने का प्रतीक है। यह एक स्थानीय व्यवहार की बात थी जो कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए थी। क्या यह आज हमारे समाज के लिए भी प्रासंगिक है? मैंने सुना है कि स्त्रियों की टोपी उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, जब भी निराश होती हूँ तभी एक टोपी खरीद कर ले आती हूँ। अब अंग्रेजी में निराशा का जो शब्द है उसका अर्थ है कूड़ा भी हो सकता है। अतः उसके पति ने कहा, यही तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास इतनी टोपियां कहाँ से आ गई। यह गंभीर बात है कि सेवा संबंधित वेशभूषा नियम स्त्रियों के लिए आवश्यक है। यदि उसे अगुवाई करना है तो उसे अपना सिर ढांकना होगा। इस विषय में अन्य संदर्भ हमें अधिक जानकारी देंगे। हम देखेंगे पहला तिमोथियुस के पत्र 2 अध्याय उसके 8 से 10 पद में लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाले स्त्रियों को यही उचित भी है। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि स्त्री आराधना में अगुवाई करते हुए अपने पवित्र हाथों को उठाए तो उसे ऐसे सज धज के नहीं रहना है कि आराधकों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। स्पष्ट कहें तो यह कि स्त्री परमेश्वर की आराधना में यौन प्रेरणा का स्रोत न बने। मेरे मित्रों, पौलुस के कहने का अर्थ यही है, उसे यौन आकर्षण का केंद्र नहीं बनना है। इस प्रकार उसका पति भी मसीह को ग्रहण नहीं करेगा। मित्रों, ध्यान रखें, इस विषय में बाइबल में अन्य और अनेक संदर्भ हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 1 पद, 3 अध्याय के 4 पद में हम देखते हैं, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलने को देखकर बिना वचन के अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है। परमेश्वर कहता है कि पत्नी का यौन आकर्षण पति को मसीह में नहीं लाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने पति को न लुभाए, परंतु यह कि दैहिक आकर्षण से वह अपने पति को मसीह में जीत नहीं सकती या नहीं पाएगी। बाइबल में यौन आकर्षण रखने वाली स्त्रियां थी, इजाबेल, एस्तेर, सलोमी आदि। धर्मशास्त्र में परमेश्वर द्वारा काम में ली गई अद्भुत अनुपम नारियां भी थी, जैसे सारा, दबोरा, हन्ना, अबिगेल और यीशु की माता मरियम आदि। मेरे प्रियो, अब पतियों के लिए भी वचन में निर्देश है। पहला पत्रस 3:7 में लिखा है, वैसे ही पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिश हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। मेरे प्रियो, अनेक परिवारों की प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, क्योंकि पति पत्नी के संबंधों में मधुरता या प्रेम नहीं है। अब पौलुस पद 4 में दिए गए पति संबंधित नियमों पर फिर से लौट करके आता है। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के पत्र 11:7-9 में लिखा है, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। मेरे मित्रों, ध्यान रखें, स्त्री का स्थान पुरुष का संगी होना है, उसे उसकी अर्धांगिनी होना है। स्त्री बिना कोई भी पुरुष अपूर्ण है, जब तक कि परमेश्वर ने उसे किसी विशेष कार्य के लिए विशेष अनुग्रह प्रदान न किया हो। आइए हम देखें अगले पद में, पहला कुरिन्थियों के पत्र 11:10 में लिखा है, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखें। मित्रों, यहाँ पर स्वर्गदूतों के बारे में कहा जा रहा है और इसे समझना कठिन है। मेरा विचार यह है कि हम परमेश्वर के सृजित बुद्धिजीवियों के निरीक्षण में रहते हैं। हम इस संसार में मंच पर हैं और परमेश्वर के सृजित बुद्धिजीवियों के द्वारा देखे जा रहे हैं। वे परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं हैं। संभवतः वे सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें त्याग कर अच्छा ही किया है, क्योंकि इस जगत में विद्रोही मनुष्य है। परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर ने हमारा त्याग नहीं किया है, वह हमसे प्रेम करता है। उसके प्रेम का प्रदर्शन उसका वह अनुग्रह है जो उसने हमारे उद्धार के निमित्त प्रकट किया है। स्वर्गदूत संभवतः अचंभा करते हैं कि अकंचन मानव के प्रति परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी और धीरजवंत है। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 11:11 में पढ़ते हैं, तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है। ध्यान रखिए, स्त्री का अधिकार उसका पति है, क्योंकि वह स्त्री है। पुरुष अपनी स्त्री को थामता है, क्योंकि वह पुरुष है। यह परमेश्वर द्वारा नियुक्त विवाहित संबंध है। यदि यह संबंध ना हो तो परमेश्वर का मसौदा समाप्त हो जाता है। आइए हम आगे देखें, पहला कुरिन्थियों के पत्र 11:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष भी स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। दोनों अविभाज्य है, अर्थात वे बट नहीं सकते। पुरुष न स्त्री अपने आप में एक संपूर्ण गोला है, दोनों ही एक एक गोलार्थ हैं। अतः स्त्रियों या पुरुष मुक्ति की बात करना निरर्थक ही है। स्त्री को पुरुष की आवश्यकता है और पुरुष को स्त्री की, यह विवाह के सुहावने संबंधों की स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थी 11:13 में लिखा हुआ है, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहता है? स्त्री जब परमेश्वर के बारे में प्रबोधन करे या बाइबल शिक्षा दे या प्रार्थना करे तो उसे स्वयं को ध्यान का केंद्र नहीं बनाना है, यौन आकर्षण का कारण नहीं बनना है। उसे स्मरण रखना है कि यौन आकर्षण के कारण पुरुष या तो ऊपर उठेगा या गिरेगा, अर्थात वह पाप में गिर सकता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 11:14 में लिखा है, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? जी हाँ, आज पुरुषों में बड़े बाल रखना एक आम बात है। पुरुष यदि इतने लंबे बाल रखे कि पहचाने न जाए तो मेरे विचार में वे जीवन के उद्देश्य से वंचित हैं। मैं सोचता हूँ कि यह कहीं पशु जगत की ओर अग्रगमन तो नहीं है। ध्यान दीजिए, पौलुस पूछता है, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। पुराने नियम में हमारे पास इसका उदाहरण है। नाजीर की मन्नत परमेश्वर के लिए समर्पण का कार्य था, उसका चिन्ह था। लंबे बाल जो कभी काटे नहीं गए, इसका अर्थ है कि एक नाजीर, अलग किया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के निमित्त अपमान सहन करने के लिए तैयार था। उस युग में भी लंबे बाल पुरुष के लिए लज्जा का कारण था। हम पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। जी हाँ, यह सच है कि आज हमें मसीह में स्वतंत्रता प्राप्त है। लंबे बाल वास्तव में मुख्य विषय नहीं है, उसके पीछे जो उद्देश्य है वह मुख्य विषय है। अनेक पुरुष प्रायः विद्रोह के कारण बड़े बाल रखते हैं और स्त्रियां भी विद्रोह ही के कारण लंबे बाल रखती हैं। हमारी नैतिक मान्यताएं विकृत हो जाती है और दोनों ही ओर अतिवंद का संकट उत्पन्न हो जाता है। मेरे प्रियो, अतिवाद या कहें उग्रवाद एक विचित्र व्यवहार उत्पन्न करता है। जैसे कि एक स्त्री को मानसिक चिकित्सक के पास जाना पड़ा क्योंकि उसके परिवार ने उसे बाध्य किया था। चिकित्सक ने पूछा, आपकी समस्या वास्तव में क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा परिवार सोचता है कि मेरा व्यवहार विचित्र है, परंतु बात यह है कि मुझे मालपुआ बहुत अच्छा लगता है। चिकित्सक ने उससे कहा, आपको मालपुआ अच्छा लगता है तो उसमें बुराई क्या है? मुझे भी मालपुआ बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा, सच में? कभी घर आइए, मैंने संदूक भरकर मालपुआ रखा है। तो देखा आपने मेरे मित्रों, आप किसी सामान्य बात में भी अतिवादी हो सकते हैं। ध्यान रखें, अब पौलुस कहता है कि बाल काटना या वेशभूषा का विशेष महत्व नहीं है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जाने कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलिसियाओं की ऐसी रीति है। पौलुस अंत में कहता है कि कलिसिया बालों और स्त्रियों की वेशभूषा के विषय नियम निर्धारित न करे। मुख्य विषय तो भीतरी मानव का है। पुराने स्वभाव को बाल काटने की और धार्मिकता के वस्त्र पहनने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, हम मसीह की धार्मिकता धारण किए हुए हैं, अतः यदि हमारा पुराना स्वभाव पवित्र आत्मा के अधीन रहेगा तो बाहरी मनुष्यत्व स्वतः ही ठीक हो जाएगा। तब न तो बाल और न ही वस्त्र से कोई अंतर पड़ेगा। पौलुस कहता है कि वह कलीसियाओं के लिए नियम निर्धारित नहीं कर रहा है, वह अपने विचारों में सर्वोत्तम बात कह रहा है। जी हाँ, हमें स्मरण रखना है कि हमारी मसीही स्वतंत्रता में हमें अन्यों के बारे में और मनुष्य के समक्ष अपनी गवाही के बारे में सोचना है। हमें पौलुस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर चलना है कि परमेश्वर का महिमा हो और मनुष्यों को ठोकर हमारे द्वारा न लगे। मित्रों, हम आगे देखते हैं प्रभु भोज के विषय में। अब हम एक नए विषय में देखेंगे और ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक सीमा से दूसरी सीमा पर जा रहे हैं, बाल और वेशभूषा से प्रभु भोज पर आना। यह परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों का सबसे अधिक पवन पक्ष है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारी कलिसियाएं प्रभु भोज के बारे में सही समझ से वंचित हैं। परिणाम स्वरूप कुछ कलिसियाओं में इसका पालन लगभग निंदा ही है। पौलुस यहाँ कहता है कि परमेश्वर प्रभु भोज के हमारे अनुष्ठान का न्याय करता है। सच तो यह है कि कुरिन्थ की कलिसिया में कुछ सदस्य रोगग्रस्त थे और कुछ मर चुके थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु भोज को उचित रीति से ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने मसीह की देह को औचित्य प्रदान नहीं किया था। मित्रों, मैं सोचता हूँ कि क्या आज हम मसीह की देह को मान्यता प्रदान करते हैं? हम प्रायः विधि पालन करते हैं, हम अनुष्ठान की एक एक बात के प्रति सतर्क रहते हैं, परंतु क्या हम प्रभु भोज में मसीह की देह को मान्यता देते हैं? मेरे मित्रों, प्रभु भोज मसीही आराधना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति एवं पावनतम अभ्यास है। कुरिन्थ की कलिसिया में प्रभु भोज इतना अधिक सांसारिक और पतित हो गया था कि वह निंदित हो गया था। मैं इस भाग को पत्री के आत्मिक वर्ग में रख सकता था, परंतु सच तो यह है कि पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया की सबसे बड़ी बुराई की चर्चा कर रहा है। मेरे प्रियो, इसका कारण मैंने इसे सांसारिकता के वर्ग में रखा है। 4 सुसमाचार वृत्तांतों में से 3 सुसमाचार प्रभु भोज का उल्लेख करते हैं। उसके बाद प्रभु भोज का उल्लेख इस पत्री में दिया गया है। यह एक रोचक बात है कि हमें कहीं भी निर्देश नहीं दिया गया कि प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाएं, परंतु निवेदन वरन एक आज्ञा दी गई है कि अपने प्रभु यीशु का मरण दिवस सदैव स्मरण रखें। पौलुस प्रभु भोज को सर्वोच्च महत्व देता है। पद 23 में वह कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। पौलुस को यह प्रकाशन सीधा प्रभु से प्राप्त हुआ था। पहला कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय उसके 3 पद में वह कहता है, मैंने सबसे पहले तुम्हें वह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पौलुस को सुसमाचार और प्रभु भोज का दिव्य प्रकाशन प्राप्त हुआ था। मेरे प्रियो, प्रभु ने इसके संबंध में पौलुस को विशेष निर्देश दिए थे। आप जानते हैं कि प्रभु भोज के प्रतिष्ठान के समय पौलुस कोठरी में उनके साथ नहीं था। मैं स्वीकार करता हूं कि कुरिन्थ की कलीसिया को कहे गए प्रभु भोज संबंधित पौलुस के वचनों को हमारे आज के प्रभु भोज से संयोजित करना कठिन है। उनमें समानताएं नहीं है क्योंकि परिस्थितियां भिन्न है। उस समय प्रभु भोज सामुदायिक भोज के बाद होता था। अति संभव है कि प्रभु भोज प्रतिदिन घर घर में मनाया जाता था। हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 46 और 47 पद में पढ़ते हैं, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मेरे मित्रों, उस युग के अर्थात 2री शताब्दी के आरंभ में एथेंस के एक दार्शनिक ने मसीही विश्वासियों के जीवन आचरण के विषय में लिखा, प्रतिदिन सुबह वरन प्रति घंटा उन पर किए गए परमेश्वर के उपकारों के लिए वे उसकी स्तुति और सराहना करते थे। यदि उनका कोई भी धर्मी जन मर जाता था तो वे आनंद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, और यदि शिशु की मृत्यु हो जाए तो वे परमेश्वर की ऐसी महान स्तुति करते थे कि जैसे कोई निष्पाप इस संसार को पार कर गया है। यह एक ऐसे व्यक्ति का कहना है जो कलीसिया का सदस्य नहीं था, परंतु 2री शताब्दी में उन्हें ध्यान से देखता था। वह कलीसिया के बाहर का एक दर्शक था जिसने इन बातों को कहा है। मेरे मित्रों, कुरिन्थ की कलीसिया प्रभु भोज से संबंधित भोजन का आयोजन करती थी, क्योंकि फसह भी इसी प्रकार का एक सामूहिक भोजन था। प्रभु ने फसह खाया और रोटी लेकर तोड़ी। उसने विलोप होते पर्व को एक नया रूप दिया। उसकी राख से प्रभु ने एक नया स्मारक खड़ा किया जो संगमरमर और तांबे का नहीं भोज्य पदार्थ का था। मेरे प्रियो, आज कलीसियाओं में क्लब, भाईचारा, बैंक और बीमा कंपनियां हैं जो सहभागिता करती हैं। अनेक लोग कलीसियाई भोज की आलोचना करते हैं, मैं भी करता हूं, परंतु जब वे मनुष्य को केंद्र में रखकर एकत्र होते हैं। आरंभिक कलीसिया में भोज का उद्देश्य था सहभागिता, और भोज को प्रेम भोज कहा जाता था जो कलीसिया की सहभागिता का एक भाग था। उस समय की यह विशेष सहभागिता प्रभु भोज होती थी जो पृथक था, परंतु प्रेम भोज या प्रभु भोज धन्यवाद के पूर्व होता था। आगे चलकर ये दोनों पर्व अलग किए गए, वे आज वैसे ही व्यवहारिक नहीं है। हम प्रभु भोज से पहले प्रेम भोज का आयोजन नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, इस विभाजन के कारण हम कुरिन्थ की कलीसिया की बुराइयों को दोहराने से बचे हुए हैं। यहाँ हमारे लिए भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको देखना है कि हमारी कलीसियाओं में हम प्रभु भोज किस रीति से लेते हैं। क्या कुरिन्थ की कलीसिया के समान हम अपने जीवन में पाप के साथ जाते हैं या एक किसी प्रकार की परंपरा को पूरा करने के लिए जाते हैं। कई बार हम कलीसियाओं में बहुत सहजता से इसे ग्रहण करते हैं, जबकि यह बहुत गंभीर और मुख्य बात है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही नई बातों को सीखा है और अपने आत्मिक उन्नति में आपने लाभ प्राप्त किया है। आइए आज हम सब भी एक सही निर्णय लें और परमेश्वर की कलीसिया में आगे बढ़ें और उसके द्वारा हम उसे महिमा दे सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।